کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنشن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زین مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیر رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ،
کیسے مزاج کے؟
الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ فضل و کرم۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں گے۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ گرمی کے دنوں میں اکثر لوگ ایسے کپڑے پہنتے جس میں جسم جھلکتا ہے، تو کیا ایسے کپڑے پہننے سے نماز ہو جاتی ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا لباس پہننا جسے جسم کی رنگت نظر آئے، تو اگر ستر یعنی جو حصہ جسم کا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے نماز میں، عورت کے لیے تو پورا بدن ہی یہی حکم ہے، اور مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔
ٹھیک،
تو اس حصے کا اگر جو ہے وہ رنگت نظر آئے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ ہلکے کپڑے ہیں، جیسے کرتا جو ہے وہ عموماً لون کا جو ہے وہ مرد جو ہے وہ پہن لیتے ہیں، شلوار جو ہے وہ موٹی ہے، کاٹن کی ہے یا واشنگ ویئر کی ہے، جس سے جو ہے وہ ستر کی رنگت نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں صرف جو ہے وہ لون کا کرتا کہ جو ہلکا ہے، جس کی وجہ سے اگرچہ رنگت بھی نظر آ رہی ہے، اس سے مردوں کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا کہ ان کا ستر جو ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہاں، عورت اگر جو ہے وہ نیٹ کا کوئی ایسا جو ہے وہ دوپٹہ ہی پہن لیتی ہے، پورا لباس تو اس نے صحیح پہنا ہوا ہے لیکن دوپٹہ پہنا، تو چونکہ عورت کو سر کے بال چھپانا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، تو اب اگر دوپٹے کی جو ہے وہ رنگت یا وہ اتنا باریک ہے کہ اس سے جو ہے وہ بالوں کی رنگت نظر آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، یعنی پہچان کیا ہوگی، کیسے اس کو پہچان کریں گے؟ یعنی ہر دوسرے کپڑے میں کچھ نہ کچھ عضو کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے، نیچے کچھ پہنا ہے، بالفرض بنیان پہنی ہے، ٹھیک ہے
جی،
تو بنیان سے آگے والا حصہ پتہ چلے گا کہ یہاں بنیان ختم ہو رہی ہے، اور تو کیا محض اسی وجہ سے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا؟
یہ تو دیکھیں، ایک شیپ کی وجہ سے جو ہے وہ کہ ایک کپڑے کے نیچے دوسرا جو ہے وہ کپڑا ہے، تو اس سے وہ شیپ کا جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر تھوڑا سا وائٹ کے نیچے ہی وائٹ کپڑا آئے گا، تو ایک جو ہے وہ اوپر کلر جو ہے وہ بالکل ہی وائٹ ہوگا، اور وائٹ اگر نہیں ہے نیچے جسم ہے تو صورتحال جدا ہوگا، کلر جو ہے وہ اور ہوگا، تو اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا۔ واضح کہ ہر کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی اس میں تو جو ہے وہ جسم کا رنگ نظر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے، جیسے جالی کے جو ہے وہ دوپٹے ہوتے ہیں یا اور جو ہے وہ باریک جو ہے وہ لباس، تو اس کا یہ حکم ہوگا۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے ابھی نارمل پہنا ہوا ہے تو نہیں ہے، لیکن پانی لگے گا تو پھر جو ہے وہ نظر آئے گا، تو وہ پانی والی کا اعتبار نہیں ہوگا، نارمل پہنی ہوئی حالت کے اندر جو ہے وہ آپ کے جسم کی رنگت نظر نہ آ رہی ہو۔
ٹھیک ہے، یعنی نارمل کاٹن کے یا لون کے یا اس طرح کے لباس جو عموماً لیڈیز بھی پہنتی ہیں
جی،
تو
ہاں وہ
ہم منع نہیں کر سکتے،
جو ہے وہ منع جو ہے وہ نہیں کر سکتے، دار و مدار جو ہے وہ رنگت کے اوپر ہے، اسے دیکھ لیں۔ ہاں، جس کو شک و شبہ ہے تو بہرحال نماز احتیاط کا معاملہ ہے، اگر وہ کسی سے اس وقت پوچھ سکتا ہے یا پوچھ سکتی ہے تو پوچھ کر عمل کر لے، ورنہ جو ہے وہ احتیاط یہی ہے کہ جب شک و شبہ ہو رہا ہے تو آپ اسے تبدیل کر دیں۔
اچھا، لباس ایسا ہے تو کیا ایسی صورت ہے کہ کوئی اوپر سے کچھ عبایا پہن لیا؟
جی، اصل تو چھپانے کا حکم ہے، ضروری نہیں کہ وہ چیز ہی جو ہے وہ ایسی ہو۔ جیسے عورت ہے، اب عورتوں نے مثال کے طور پہ ہاف آستین کی جو ہے وہ قمیض سلوائی ہوئی ہے، تو اب اس صورت میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن اب اگر وہ اوپر دوپٹہ جو ہے وہ لے لیتی ہیں، اور لیتی ہی ہیں کہ سر کے بال جو ہے وہ چھپانے ہی ہیں، اسکارف پہن لیتی ہیں، اب اس کے اندر وہ اس بات کا بھی احتیاط کرتی ہیں کہ جو ہے وہ رکوع یا سجدے میں جاتے آتے کے اندر بھی وہ دوپٹہ یا وہ اسکارف جو ہے وہ اوپر ہو کر کلائی کو جو ہے وہ واضح ظاہر نہ کریں، تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ وہ نیچے جو ہے وہ اس جگہ پر جسم پر لباس نہیں ہے، لیکن اوپر والا چادر یا اسکارف جو ہے وہ اگر اسے کور کر دیتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی.
جی بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف.
مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی لوکیشن پہ رہ رہے ہیں جدھر 35-40 بندے ہیں، ادھر جمعہ نماز نہیں ہوتی، اپنے کوئی خطیب صاحب مولوی صاحب نہیں ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے 5 ٹائم، اور جمعے والے دن ہم جمعہ کی زور کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، زور کی اذان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
30-35 ہی رہتے ہیں، اور یہ کیا ان کو کیا مشورہ ہے؟
جمعے کے لیے شہر ہونا سب سے پہلی بنیادی شرط ہے. اگر آپ شہر سے جو ہے وہ الگ کسی جگہ پر ہیں، عموماً ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ورک فیلڈ ہے، کوئی ایسی کمپنی یا کوئی ایسا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے جو کہ صحرا میں یا جو ہے وہ شہر سے دور جو ہے وہ بنا ہوا ہے، نہ شہر میں ہے نہ ہی شہر کے مضافات کے اندر ہے، تو ایسی صورت کے اندر جب کہ آپ جو ہے وہ شہر سے باہر ہیں، تو اگرچہ وہاں پر آپ کے پاس خطیب صاحب بھی موجود ہوں، جب بھی آپ جمعہ وہاں ادا نہیں کر سکتے، کہ جمعے کی ادائیگی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شہر ہو. اچھا اب شہر جو ہے وہ اگر نہیں ہے تو آپ جمعہ ادا ہی نہیں کر سکتے. اگر شہر بھی ہے یا شہر کا مضافات بھی جو ہے وہ ہے، مگر وہاں پر جمعہ پڑھانے والا جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس میں جمعے کی شرائط امامت بھی پائی جاتی ہوں، تو اب ایسی صورت میں بھی ہر کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکتا. نماز نارمل نماز کی شرائط میں یہ ہے کہ جناب وہ شخص جو ہے وہ اس میں شرائط امامت پائی جاتی ہوں اور فاسق مولن نہ ہو، تو وہ آپ کو نماز جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے. لیکن جمعے کے اندر مزید اضافی خاص شرائط ہوتی ہیں جس کے پیش نظر جو ہے وہ شخص جو ہے وہ جمعے کا امام بن سکتا ہے، تو ہر کوئی جمعے کا امام نہیں بن سکتا. تو اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. ہاں شہر سے قریب ہیں آپ یا مضافات میں، تو حکم یہ ہوگا کہ بھائی پھر شہر میں آئیں اور شہر میں آ کے جو ہے وہ آپ جمعہ جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ بہرحال آپ شہر کی آبادی کے اندر ہی ہیں، مضافات میں ہی ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ جو ہے وہ جمعہ ادا کریں. لیکن جب آبادی سے ہی آپ باہر ہو گئے، شہر سے ہی باہر ہو گئے، تو اب جمعہ لازم نہیں. اور جہاں بھی جمعہ لازم نہیں ہوگا وہاں نماز ظہر ہی فرض ہوگی اور وہی ادا کرنا ضروری ہے. اور جب باہر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے، تو پھر ظہر بھی باجماعت ہوگی، اکیلے اکیلے بھی نہیں ہوگی. ایسی جگہ پر آپ باجماعت نماز ظہر جو ہے وہ ادا کریں، اگر آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے اندر شرائط امامت پائی جاتی ہوں اور وہ فاسق مولن نہ ہو،
تو وہ ظہر کی نماز
ظہر کی جماعت کے ساتھ جو ہے،
یعنی یہ ان جگہوں کے لیے بطور خاص کہ جہاں پہ جمعہ فرض ہی نہیں ہے،
جمعہ فرض ہی نہیں ہے
تو اہتمام کے ساتھ وہ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور شہر کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ ہو یا کوئی ایسے افراد ہوں کہ جن کے جمعہ کی نماز رہ گئی ہو،
ہاں وہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نماز ظہر جو ہے وہ باجماعت ادا کریں، بلکہ وہ جو ہے وہ اپنی نماز ظہر جو ہے وہ بغیر جماعت کے علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پر جو ہے وہ ادا کریں گے.
ٹھیک ہے، بہت اہم بات ہے. اور یہ جمعے کے حوالے سے بطور خاص جو بیان کی گئی ہے کہ جمعہ کی امامت کا حکم عام ظہر کی امامت کی طرح نہیں ہے یا عام نمازوں کی امامت کی طرح نہیں ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، اور اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی عام طور پہ کہیں بھی کچھ افراد ہوں یا بطور خاص کبھی بھی کچھ ایسے معاملات ہو جائیں کہ گھروں میں معذور ہو جائیں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوراً آپ دس
جمعہ جو ہے وہ ادا کر لیں، دس افراد ادا کر لیں. یہی حکم عیدین کا بھی ہے کہ اب اگر آپ کی مسجد میں عید کی نماز چھوٹ گئی تو آپ بولیں چلے جناب محلے کے اندر جو ہے نا دریاں بچھاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ یہاں پہ عید پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح آپ جو ہے وہ باہر، کئی لوگ جو رہتے ہیں یہ جسے میں نے کہا کہ شہر سے باہر ہیں، تو اب وہ بولے عید کے موقع کے اوپر ہم سارے ہی موجود ہی ہیں تو چلیں عید پڑھ لیتے ہیں، تو نہیں، وہاں پر بھی عید نہیں ہوگی، کہ اس کے لیے بھی شہر شرط ہے.
ٹھیک ہے جی، مزید سوال.
میرا سوال ہے بھائی جان، مطلب میں سکریپ کا کام کرنا، میں کسی بندے کو پیسے ضرورت پائیے 10-20 ہزار لے لینا وا، پھر واپس دے دینا وا اپنی خوشی نال، 200-400-500-700 جو میرا دل کرتا ہے میں دے دینا، میرے نال کوئی مطالبہ نہیں کرتا. میں یہ متعلق پوچھنا چاہنا کیا یہ سہولت نہیں ہے، میں کھلے دل وہ پیسے استعمال کر سکنا یا نہیں کر سکتا؟
جی پیسے لیتے ہیں، کام تو نارمل ہے اسکرپ کے حوالے سے، लेकिन कहीं से ज़ाहिर पैसे होंगे तो लोगों से ख़रीदेंगे, तो 80,000 90,000 किसी से लिया, फिर उसको 1,500 700 वापसी दिया।
देखिए कर्ज़ लेकर उसके ऊपर नफ़ा देना अगर शर्त है, पहले से ही अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर मुझे नफ़ा देना होगा, चाहे फिक्स है चाहे ये है कि भाई जो मर्ज़ी आए दे देना, तो अब ये जो फिक्स होगा ये किस तौर पर होगा, शर्त किस तरह होगा कि या तो ज़बान से कह दिया कि यार ये मैं 80,000 रुपये दे रहा हूँ मुझे इसके ऊपर क्या मिलेगा, तो सामने वाले ने कह दिया कि भाई जो है वो मैं इस पर आपको मुनासिब जो है वो कुछ दे दूँगा या इतने पैसे दे दूँगा, ये हो गया ज़बानी तौर पर तय कर लिया। एक ये है कि ज़बानी तौर पे तो नहीं कहा लेकिन अंडरस्टूड दोनों के दरमियान के जनाब ये लेन देन जो है वो इसी बुनियाद पर हो रहा है कि ये मुझे इस कर्ज के ऊपर वापसी में कुछ नफ़ा देंगे, तो इसको कहा जाता है कि अंडरस्टूड तौर पर दलालतन जो है वो एक चीज़ तय होना। तो अगर दलालतन भी इस तरह तय है तो ये भी सूद है कि हदीस पाक में फरमाया कुल्लु कर्दिन जर्रमन फियातन फहुवा रिबा, हर वो कर्ज जो नफ़ा लाएगा वो सूद है, तो इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। हाँ एक ये कि आपने किसी से कहा कि भाई मुझे ये कर्ज दें बग़ैर सूद के, मैं इसके ऊपर आपको कोई नफ़ा नहीं दूंगा, मैं आपको जो है वो बग़ैर किसी इवज़ के ही ये पूरे के पूरे पैसे वापस कर दूंगा। अब अदायगी करते वक्त आपने अपनी तरफ से बतौर एहसान उसने खैरखाही की एहसान किया आपके साथ, अब आप भी उसके साथ खैरखाही और एहसान करते हुए आपने कुछ इजाफी पैसे दे दिए, जबकि पहले आप सराहतन मना कर चुके थे, क्योंकि फ़ी ज़माना उर्फन एक तरीके से ये समझें कि अंडरस्टूडी कई जगहों के ऊपर या अक्सर जगहों पर होता ही है कि जब मैं कर्ज़ ले रहा हूँ तो यार कोई सामने वाला इसके ऊपर देगा, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो कि कारोबार में उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ ज़्यादा ये जहन में होता है कि यार ये कारोबार में लगा रहा है मेरा पैसा तो इसको नफ़ा मिलेगा तो मेरा भी हिस्सा इसके अंदर जो है वो होगा। तो इसलिए वाज़े बिल्कुल तमाम शकूक व शुबहात से पाक सूरत यही है कि आप वाज़े तौर पे मना कर दें कि मैं जो आपसे पैसे ले रहा हूँ इस पर आपको किसी किस्म का कोई नफ़ा नहीं दूंगा, ये पूरे के पूरे पैसे बग़ैर किसी इजाफी पैसों के मैं आपको वापस करूँगा, ये आपने कह दिया। अब आपने देते हुए उसको जो है वो 200-400 रुपये दे दिए ऊपर से, तो ये सूद नहीं है, ये आपकी तरफ से जो है वो इजाफी गोया कि उसको इनाम है, उसकी मदद है, तोहफ़ा है, ये कह लें आप उसे, लेकिन जो है वो ये सूद में नहीं आएगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं,
और फिर जैसे
वही पहले वाली सूरत
पहले वाली, फिर जब आपने ये कहा कि नहीं एक मरतबा हो गया और अब रिटर्न इस तरह पैसा आया और फिर अगली दफ़ा फिर ये उनसे लेने जाने के यार मेरे को ये काम है
जी,
एक जहन में तो बात
जी जहन में,
और तो ये हो सकता है कि वो मना कर दे कि मुझे आपसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए या इस पर कोई प्रॉफिट नहीं
जी,
मैं सिर्फ आपको कर्ज दे रहा हूँ।
हाँ वही वाजे सराहतन जो है वो इस बात का इनकार कर दे, या तो देने वाला इनकार कर दे या लेने वाला जो है वो इनकार कर दे कि भाई इसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो मैं आपको प्रॉफिट ना दूंगा, या वो बोले कि मैं नहीं लूंगा मुझे सिर्फ मेरे अपने पैसे ही वापस चाहिए, ये मैं आपके साथ खैरखाही मुसलमान के साथ हुस्ने सलूक के तौर पर जो है वो मैं आपकी मदद के तौर पे दे रहा हूँ, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिएगा वक्त पर, यही बड़ी बात है। तो इस तौर पर दिए, अब अगर सामने वाले ने उसके ऊपर कुछ इजाफी रकम दे दी तो वो जायज़ और हलाल है, उसमें कोई हरज नहीं
है। और इसी को हदीस पाक में जो इरशाद फरमाया गया कि तुम कर्ज को भी आसन अंदाज से लौटाओ, जब भी किसी का कर्ज है और उसको जब आप रिटर्न कर रहे हो, यानी हमारे दीन ने तो हमें ये तालीम दी है कि आप किसी से पैसा लिया है कर्ज लिया है और कोई शर्त नहीं है किसी तरह की और आप ऐसे ही नॉर्मल पैसे लिए, अब जब आप वापसी रिटर्न कर रहे हैं तो आप आसान अंदाज से उसका पैसा उसका माल तो पूरा पूरा रिटर्न करना ही करना है, लेकिन अगर आप उसके साथ कोई चीज़ उसको दे देते हैं, बिलफर्ज आपने सूट दे दिया, मिठाई दे दी, कुछ भी आपने ऐसी चीज़ दे दी, तो ये उस ममानत में नहीं है जहाँ ना शर्त है ना कोई अंडरस्टूड वाला मामला है, बल्कि ये हदीस पाक से बाकायदा साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी से खजूर वगैरह कुछ कर्ज ली थी और फिर जब रिटर्न का मौका आया तो आपने फरमाया था कुछ ज़्यादा दे दें, तो इसका बाकायदा सबूत उस हदीस पाक से मौजूद है। कफील साहब ये देखता हूँ कि यानी कर्ज को लौटाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये इहतमाम है
जी,
और अब तो हालात ये है कि असले रकम
ही वापसी नहीं,
वापसी ही लेना कितना मुश्किल काम है, यानी कर्ज लेते वक्त बड़ी नरमी और आजजी और अपना उजर और सामने वाला सेठ या सब कुछ है, लेकिन जब इसने वापसी लेना है तो फिर ये एक फकीर मंगता कुछ भी कह लें इसको, इसको 100 बातें सुनी।
ये तो शाजो नादिर अब नायाब सूरत होगी कि कोई शख्स जो है ना वो ला के उसी तरह लजाजत के साथ जो है ना वो कर्ज वापस भी करे
और शुक्रिया भी अदा करे,
शुक्रिया भी अदा करे कि सर आपने जो है वो मुझे जो है वो कर्ज दिया, आपका शुक्रिया। तो वाकई ऐसा ही है कि कहीं तो वो सूरत हाल है कि लोग सूद जैसी लानत में पड़े हुए
जी,
और कहीं जो है वो इस कदर बेमुर्वती है कि जो है ना वो सामने वाले को वक्त पर ना उसकी असल रकम की अदायगी करते हैं, ना ही उसका शुक्रिया जो है वो अदा करते हैं, बल्कि उल्टा उसके ऊपर जो है वो गुस्सा करते हैं कि यार तुमने कर्ज दे के कौन सा मुझ पर एहसान कर दिया, मिल जाएगा ना, बोल दिया ना तुम्हें जो है वो, क्या तुम बार बार मेरे पीछे जो है वो लगे हो, जब होंगे मैं दे दूंगा। तो इस तरह के जुमले जो है वो अमूमन सुनने को मिलते हैं। तो असल यही है कि दीन की तालीमात यही है कि आपने जिससे कर्ज लिया है वक्त के ऊपर अदायगी करें, बल्कि होना तो ये चाहिए कि वक्त से पहले अदायगी करें तो उसे भी एक जो है वो गैर मुतवक्के खुशी जो है वो मिले कि भाई ठीक है इन्होंने मुझसे कहा था कि सितंबर में देंगे, आपने अगस्त में ही ला के दे दिया कि ये ना सर ये आपका जो है वो कर्जा था। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका काम हो चुका होता है, अब लोग क्या सोचते हैं कि यार वो उसको तो वो टाइम दिया हुआ है ना, चलो अब मैं इस पैसे को और कहीं लगा देता हूँ। भाई आपने जिससे पैसे लिए हुए हैं ज़रूरत के लिए आपने लिए थे, तो अगर आपकी ज़रूरत 4 महीने पहले पूरी होगी तो ज़रूरी है उसको 4 महीने के बाद ही देने, आपका उससे कोई सौदा थोड़ी हुआ हुआ है, उसने तो एक आपके साथ भलाई की हुई है, तो भलाई का तकाजा ये है कि आप भी भलाई ही करें और उसे जो है वो वक्त के ऊपर दें, वक्त से पहले चीज़ आ गई तो वक्त से पहले उसे जो है वो उसकी चीज़ जो है वो वापस कर दें। लेकिन कई लोग इस मामले के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेमुरुवती का जो है वो मुजाहरा करते हैं, ना असल रकम देते हैं और वो उसके बाद जो उसके साथ डीलिंग का अंदाज होता है तो वो भी जो है वो बड़ा अजीब और गरीब हो जाता है। इसीलिए कई जगहों के ऊपर लिखा हुआ होता है ना कर्ज मांगकर ताल्लुकात ख़राब ना करें, तो यही होती हैं। वरना हालांकि कर्ज देना ये इस्लाम की जो उम्दा तालीमात में से है कि बग़ैर नफ़े के कर्ज दिया जाए, एक मुसलमान का एक एतबार से हक है कि चले गए दूसरा मुसलमान जो कि जिसको मदद की हाजत है बंदा उसकी जो है वो मदद कर रहा है और उसके ऊपर सवाब हदीस पाक में फरमाया है कि रोज़ाना उतना जो है वो उसे सदका करने का जो है वो सवाब जो है वो मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की तरफ है कि कर्ज दिया जाए, मगर सामने वाले के लिए ये है कि वो कर्ज जो है वक्त पर वापस करे और आसान अंदाज में वापस करे
और बिला ज़रूरत तकाजा भी ना करे। बिला ज़रूरत लोगों से कर्ज लेना और कईयों की आदत होती है ना कि अब इसको फंसा लिया फिर इसको फिर इसको फिर आगे चलता रहता है, एतमाद उठ जाता है, लेकिन वो कईयों के माल यूं उसके पास पहुंच जाते हैं और वो आराम से अपना बिजनेस कर रहा होता है और सारे मामला तो वो कर रहा था, लेकिन जिसकी अमाउंट है रकम है उसको रिटर्न करने का उसको कोई ख्याल ही नहीं आता। तो इस चीज़ का बहरहाल ज़रूर हमें तवज्जो रखनी चाहिए। कर्ज लेने वाला बाज़ का तंग दस्त हो जाता है और वाकई तंग दस्ती है तो आप ऐसे मकरूज को मोहलत दें, आप उसको मोहलत दें। अब ये कर्ज जिसने दिया है उसको पहले से ये जहन बनाना होगा कि ठीक है इसने मुझे 4 महीने का कहा था, लेकिन अगर वाकई ही वो तंग दस्त है तो जाहिर है अब उसको मोहलत दिए बगैर चारा नहीं है। और शरीयत भी यहाँ यही कहती कि अब आप मोहलत दें, मोहलत देना वाजिब है। ऐसा अगर वाकई तंग दस्ती उसकी साबित हो जाती है तो आप उसको मोहलत दें, लेकिन सामने वाले के जब सारे मामलात बल्कि कई एक्स्ट्रा मामलात ऐसे चल रहे होते हैं और पैसा उसको रिटर्न नहीं करना, बस उससे वो बेफिक्र होता है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोगों में धराने डालने वाली होती हैं, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपस में लड़ाइयाँ डाल देती हैं और कई लोगों के ताल्लुकात, फैमिलीज़ के लोगों के ताल्लुकात इससे ख़राब हो रहे होते हैं। तो इससे हमें ज़रूर गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। एक पैकेज तैयार किया है, देखते हैं कि उसमें क्या सवाल पूछा जा रहा है।
रुकिए, ये कहाँ जा रहे हैं आप?
भाई नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा
इस हालत में?
क्यों, क्या हुआ?
ये आपके पाए से चढ़े हुए हैं, आईसीने ऊपर चढ़ी हुई हैं, इस तरह तो आपकी नमाज नहीं होगी।
वो शख्स देखें, उसने तो टी शर्ट पहनी हुई है, उसकी तो आस्तीने भी नहीं है, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी?
आप बात को समझें, इस तरह आईसीने ऊपर चढ़ाने से और पाँचों ऊपर करने से आपकी नमाज नहीं होगी।
रुकिए, परेशान ना हो, मदनी चैनल पेश कर रहा है प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जिसमें आपकी रहनुमाई करेंगे मुफ्तियानी कराम। आइए सुनते हैं मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं।
चले नहीं, उन्होंने तो इसको आप आगे जाने दिया, क्या हुआ, यही रोक के रखा है और ये रोकने वाले भाई मेरे ख्याल कुछ रहम करें, बड़ी प्यार मोहब्बत से समझाएं जो भी मसला समझाना है। क्या कहते हैं आप इनको?
एक एतबार से गोया कि समझाने वाले ने भी जो है वो गलती जो है वो कर दी, और समझने वाले ने जो कंपैरिजन किया उसमें भी उनको जो है वो गलत फहमी है,
दोनों को कुछ ना कुछ गलती हुई।
जी, अव्वलन तो ये कि नमाज में आस्तीन या जो है वो पायचा फोल्ड करना या कपड़ा कहीं से भी फोल्ड करना, तो कपड़ा फोल्ड करके नमाज पढ़ना मकरूह है, तहरीमी।
ठीक,
हदीस पाक में इससे मना फरमाया गया। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया कि सात हड्डियों पर सजदा करूं और कपड़ों और बालों को ना मोड़ूं।
ठीक,
तो इस हदीस पाक में इस बात से मना किया गया। शरी एतबार से इसका हुक्म ये है कि मकरूह है तहरीमी, यानी नाजायज़ और गुनाह है। अगर किसी ने इस हालत में नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज वाजिबुल इआदा है, यानी उसका लौटाना रिपीट करना वाजिब है। तो लिहाजा जिसे उन्होंने कहा कि नमाज होगी ही नहीं सिरे से, नमाज का फ़र्ज तो उतर ही आएगा, लेकिन चूँकि मकरूह तहरीमी नमाज होगी इसलिए नमाज जो है वो वाजिबुल इआदा है, उसका रिपीट करना वाजिब है। कई लोग यहाँ पर पायचे के मामले में अक्सर ये समझते हैं कि जनाब टखनों से ऊपर जो है वो पायचे रखना ज़रूरी है, तो ठीक है, सुन्नत यही है कि टखनों से ऊपर जो है वो हम अपनी पैंट या शलवार का जो है वो पायचा रखें, लेकिन अगर जो है वो इससे नीचे जो है वो पायचा चला जाता है तो अब कब गुनाह है? अगर किसी ने तकब्बुर की नीयत से इसको पायचा को नीचे लटकाया टखनों से तो ये नाजायज़ और गुनाह है, लेकिन अगर तकब्बुर की नीयत नहीं है, वैसे ही जो है वो पायचा नीचे लटक गया या जो है वो शलवार बड़ी है इसलिए जो है वो टखनों से नीचे जा रहा है, तकब्बुर की नीयत नहीं है, तो अब भी होना नहीं चाहिए, अब भी ऐसा करना मकरूह तंजीही है, बचना बेहतर है। मगर चूंकि दूसरी तरफ कपड़ा फोल्ड करना मकरूह तहरीमी है, तो अब एक तरफ मकरूह तहरीमी है और एक तरफ मकरूह तंजीही है, तो अब इस सूरत के अंदर जो है वो जबकि किसी की पैंट इतनी बड़ी है या शलवार इतनी बड़ी है कि वो उसे ऊपर एक एक खींच लेना, खींचने से वो हल नहीं हो रहा मसला, तो अब उसे फोल्ड करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि उसी तरह वो अगर चिटखनों से नीचे उसका पायचा जा रहा हो वो अपनी नमाज जो है वो इस हालत में पढ़ ले, नमाज उसकी अदा हो जाएगी, फोल्ड करना जायज़ नहीं है। आस्तीन नहीं है जैसे टी शर्ट वाले की है तो वो फोल्ड नहीं कर रहा, जब फोल्ड नहीं कर रहा तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता वो अफराद जो इस तरह की टी शर्ट पहनकर बग़ैर आस्तीन वाली जो है वो शर्ट पहनकर मुआशरे में भी महज़ब लोगों के सामने नहीं जाना पसंद करते, वो अगर इस हाल के अंदर जो है वो नमाज जो है वो अदा करेंगे तो उनका इस हाल में नमाज अदा करना मकरूह तंजीही है कि जिस हुलिये में लिबास में आप आम लोगों के सामने नहीं जाना चाहते तो बारगाह इलाही में जाना क्यों कर उस लिबास या उस हुलिये के अंदर मुनासिब हो सकता है, तो उनके लिए ये नहीं। और बाद वो लोग हैं जिनका लिबास ही यही है,
उनको कोई
उनको परवाही नहीं है, वो अपने ऑफिस में भी सेठ के सामने सबके सामने तो वो इसी ड्रेस के अंदर जो है वो होते हैं, तो उनके लिए वो कराहत भी नहीं है, तो उनकी नमाज भी जो है वो हो जाएगी। तो बहरहाल टी शर्ट में अगर के आस्तीन नहीं है तो चूँकि वहाँ फोल्डिंग नहीं पाई जा रही तो इसलिए वहाँ नमाज हो जाएगी, जबकि फोल्डिंग जहाँ पाई जा रही है वहाँ पर नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी। आस्तीन का हुक्म ये है कि अगर आधी कलाई से ज़्यादा जो है वो आस्तीन फोल्ड है, चूँकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप वजू करके निकले तो थोड़ी बहुत जो है वो आस्तीन फोल्ड है तो उसकी जो है वो माफ़ी रखी गई, लेकिन अगर आधी कलाई से ज़्यादा जो है वो आस्तीन फोल्ड है तो आपकी नमाज मकरूह है तहरीमी होगी, वाजिबुल इआदा होगी, तो लिहाजा इस चीज़ से बचना ज़रूरी है। कई लोग पायचा नीचे से फोल्ड करते हैं, पैंट में अमूमन लोग यही करते हैं, लेकिन शलवार वगैरह में लोग नेफे से के पास से उसे जो है वो उड़स लेते हैं या जो है वो उसे फोल्ड कर लेते हैं, तो चाहे नेफे के पास से करें चाहे नीचे से करें, दोनों ही जो है वो मकरूह तहरीमी नाजायज़ हैं, इससे बचना बेहद ज़रूरी।
अच्छा, ये हाफ आस्तीन वाला मसला है मर्दों के लिए?
जी,
खवातीन में भी जैसे अब हाफ आस्तीन घरों में आमतौर पर,
तो खवातीन के लिए तो चूँकि उनका ये सितर है तो उनके तो अगर ये बाजू कलाइयाँ नज़र आएंगी नमाज में तो नमाज ही नहीं होगी। हाँ, अगर हाफ आस्तीन है लेकिन ऊपर से उन्होंने कोई स्कॉफ़ या दुपट्टा ले लिया जिससे वो जिस्म का ये कलाई का हिस्सा जो है वो छुप गया और वो नमाज में नज़र भी नहीं आता रुकू सजदा या और किसी भी मकाम पर, तो ठीक है नमाज अदा हो जाए।
बड़ी चादर या कुछ भी ऐसा लिया, बाद का ऐसा होता है कि हाथ क़याम में तो छुप गए, हाथ बांधे तो चुप
हुई कि रुकू में आप जो है वो गए या जो है वो सजदे में गए या जो वैसे जो है वो उठे तो उस वक्त जो है वो नज़र आ जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनकी नमाज नहीं होगी, तो इसलिए ऐसी जो है वो चादर ली जाए या ऐसा स्कॉफ लिया जाए बड़ा, कि जिससे जो है वो नमाज के हर रुकुन के अंदर ही आपका वो उज्व जो है वो छुपा रहे।
ठीक है, तो हमारे इन दोनों भाइयों को ये और इनकी इनके तवस्सुत से कई लोगों की ये रहनुमाई इससे जो है वो बाकायदा हुई होगी। और यहाँ जो भाई जिन्होंने उनसे कहा था कि सिरे से ही नमाज नहीं होगी, तो उनको भी अपनी इस्लाह की हाजतें पूरी, ऐसा नहीं कि नमाज होगी नहीं, फ़र्ज़ अदा हो गए लेकिन नमाज वाजिबुल अदा होगी अगर फोल्ड की सूरत में उसने नमाज पढ़ी। दूसरा, अगर इस तरह का मसला हो तो कैसे समझाना चाहिए, कोई अंदाज भी, कोई तरीकाकार या क्या उसको?
ये कई दफ़ा देखा गया है, बाज़ लोग जो है वो उन्हें जिन्हें मसाइल मालूम होते हैं ख़ास तौर पर, यहाँ तो खैर जवान ने ये किया लेकिन कई जगह पर बुज़ुर्ग हजरात ख़ास तौर पर ये कि वो बहुत ज़्यादा शिद्दत जो है वो अख्तियार कर लेते हैं, बल्कि बसा औकात अगर किसी ने नमाज की नीयत बांध ली हो तो नमाज की नीयत तक जो है वो उसकी तोड़वा देते हैं कि भाई तोड़ दो भाई नमाज, तुम्हारी ऐसा नमाज नहीं होगी, क्या करने तुम जा रहे हो। तो अगर आपको मसला मालूम है तो अहसन अंदाज में उससे आप समझाएं कि मेरे भाई आप ये काम कर रहे हैं, शरई एतबार से ये चीज़ इस तरह जायज़ नहीं है, आइए मज़ीद तसल्ली के लिए इमाम साहब से जो है वो हम मसला पूछ लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं। तो यूँ आप जो है वो रहनुमाई करें। देखिए हमारा काम क्या है, लोगों को रहनुमाई देना, मसला बताना, सामने वाले तक पैगाम पहुँचाना मेरा और आपका काम, ज़बरदस्ती काम करवाना मेरा और आपका काम नहीं।
सेम, तरगीब दे सकते हैं
जी, हम तरगीब देंगे उसे जो है वो समझाएंगे, हो सकता है कि वो आपकी बात पे एतमाद ना कर रहा हो कि यार ये साहब कौन है, इनका क्या वो है बैकग्राउंड, वो आपको जानता ही नहीं, तो इसलिए उसका आप पर हो सकता है एतमाद ना हो रहा, उसने पहले दर्जनों लोगों से ये बातें सुनी होंगी तो इसलिए उसे लगेगा यार आज तक तो अब्बू भी यही बोलते आए, सारे महल्ले के लोग ये बोलते आए, हमारे बड़े भी यही करते आए, ये एक नई बात बता रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो तो उसमें ये हो कि मैंने उलमा से ये सुना है, आप भी जो है वो इसको चाहे इमाम साहब से मज़ीद कन्फर्म कर लें, तो ताकि आप नमाज़ पढ़ने माशाल्लाह आए हैं, वक्त भी दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब वक्त भी आप काम में से निकल रहा है और नमाज में भी बाद में जो है वो हरज वाक़ हो जाए, तो लिहाजा ऐसा कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो कुछ इस तरह जो है वो आप उनको गाइड करेंगे आसान अंदाज में, तो उम्मीद है कि जो है वो फ़ायदा भी होगा और सामने वाला जो है वो बदजन भी नहीं होगा।
अच्छा, फोल्ड के हमने दोनों सूरतें ये बयान कर देंगे। अब तीसरा सवाल ये आता है कि जब आप एहराम पहनते हैं, तहमत पहनते हैं, तो उसको भी तो लोग फोल्ड करते हैं, तो वो क्या वो भी कोई इसी तरह की ममानत में?
जी, तहबंद का चूंकि उसके अंदाज और तरीक़ेकार ही यही है, इसके अलावा है नहीं, उसके अंदर कोई नेफा जो है वो होता नहीं है, तो उसको इसी तरह जो है वो बांध कर ही जो है वो पहना जाता है और उसके अंदर उसे जो है वो उड़सा या जो है वो घुरस लिया जाता है, तो उसमें कोई हरज नहीं है।
यानी उसका मारूफ तरीका ही वही,
मारूफ इस्तेमाल का तरीक़ाकार ही वही है, जबकि शलवार या पैंट का मारूफ तरीक़ेकार ये नहीं है कि उसे नीचे से फोल्ड करके जो है वो पहना जाए। अब पैंट के अंदर भी बास पैंटें होती हैं जिसमें नीचे जो है वो बना हुआ होता है
फोल्डिंग का,
फोल्डिंग पायचा बना हुआ होता है कि वो खोल भी आप सकते हैं, लेकिन अमूमन उसके ऊपर वो इस्त्री होकर वो वैसे ही जो है वो प्रेस हुआ हुआ जो है वो होता है, वो उसी तरह जो है वो रहता है, तो उसमें कोई हरज जो है वो नहीं है।
जो मारूफ है,
जो मारूफ है, तो उसके अंदर कोई हरज जो है वो नहीं है, उसको पहनने में आपकी नमाज जो है वो अदा हो जाएगी, वो मकरूह तहरीमी नहीं हो।
वो खास कोई पेंटे हैं यानी आम, अब लोगों में तो ये होता है कि हमने
वगैरह इनमें तो नहीं होता, अमूमन जो ढीली ढाली जो है वो पेंटे होती हैं उनके अंदर, ऑफिस पैंट वगैरह पैंट कोट वाली जो होती है उसके अंदर जो है वो इस तरह जो है वो होता है। बसाओ का टांका भी लगा हुआ होता है उसके अंदर, बसाओ का टांका नहीं भी लगा हुआ होता तो वो उसकी शेप और हैयत ही ऐसी है कि उसका अलग से जो है वो पायचा नहीं बना हुआ, तो दरहकीकत वो फोल्ड करके ही उसका वो पायचा जो है वो बना हुआ होता है, तो उसमें कोई हरज नहीं।
जी चलें, नमाज के अंदर कपड़ों को फोल्ड करने के हवाले से काफ़ी मरतबा पहले भी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, लेकिन ज़ाहिर है ये मसला ऐसा है कि हर एक तक पहुँचना, हर एक इसको समझे भी तो ये ज़रूरी नहीं कि हम मस्जिदों में आप भी देखते हैं तो बकसरत इस तरह के लोग वो पाए जाते हैं या आते हैं तो आते ही पहला काम ही वो फोल्ड करने का करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके आम हालत कैफियत में पेंट नॉर्मल है तो वो ठीक है, अगर उसी तरह ही नमाज़ पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन वो नमाज़ के लिए उसे बाकायदा फोल्ड करते हैं, तो इससे आप एहतियात करनी चाहिए। जी मजीद सवाल।
मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ था तो हम उसकी इबादत करने गए, तो हमने उसको बतौर पैसे ही पैसे दे दिए कर्ज के लिए, उसको बताया नहीं, क्या बाद में मुझसे ले सकते हैं?
कर्ज के लिए ऐसे ही बतौर कर्ज के लिए पैसे इन्होंने लिए, उन्होंने मांगा ही नहीं कर्ज, आपने कर्ज कैसे लिया वैसे। और खास तौर पे आप गए हुए जो है वो आदत के लिए, तो वो तो यही समझेगा कि
मदद करके गए,
मदद जो है वो मेरी जो है वो की है। तो जब आपने कर्ज का बोला ही नहीं तो आप उसका तकाजा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो दे रहे हैं पैसे और उसके जो कराइन है वो सारे वाजे हैं कि आप जो है वो मदद या तोहफे के तौर पर जो है वो दे रहे हैं। तो इस तरह बाद में तकाजा करना ये जो है वो जायज नहीं है। ये तो फिर हर कोई कोई किसी से भी तोहफा लेते वक्त फिर मोहतात ही हो जाएगा कि भाई इंसाफ से पूछ लें ये तोहफा दे रहे हैं या कर्जा दे रहे हैं।
कर्जा दे रहे हैं और फिर कर्ज बकायदा अक देना।
जी बिल्कुल, वो बाहमी रजामंदी से होगा ना, दोनों तरफ से होगा। तो उसको शख्स को पता हो कि जी जनाब ये कर्जा दे रहे हैं और मैं कर्जा ले रहा हूँ, तो ही होगा, वरना जो है वो बहरहाल ये कर्ज शुमार नहीं होगा और ये तकाजा भी नहीं कर सकता।
इस मौके पे तो वैसे ही आमतौर पे कुछ ना कुछ लोग देते हैं,
मदद करते हैं, तोहफा देते हैं या खाने पीने की चीज साथ लेकर चले जाते हैं।
अच्छा, मदद और कर्ज में बाद तो इस तरह के तो केस आए हैं कि सामने वाले ने अपनी कोई मजबूरी की कि यार आप मुझे कुछ रकम चाहिए तो आप रकम दे दें। अब ये तो इस नतीजे पे नहीं पहुंच सका उस वक्त कर्ज है या मदद है कुछ है। अच्छा, अब एक अरसा गुजरा तो आप वो तकाजा कर रहे हैं कि यार वो रकम तो मुझे आपने की थी, अब मेरे हालात ये हैं तो आप मेरी रकम रिटर्न कर दें। वो कहे कि भाई आपने तो मुझे, मैंने आपको अपना दुखड़ा सुनाया था, आपने पैसे दे दिए। तो ऐसी चीज़ों में इबहाम, यानी यहाँ पर बतौर ख़ास
जी
कि जहाँ वो देने नहीं आया, इसने तकाजा भी किया, आपने कुछ हालात बताए, तो वाजे कर देना चाहिए ना कि ये
बिल्कुल
क्या है?
वाजे करना ही चाहिए कि बाद में जो है वो आप उसकी गलत फहमी का शिकार हो जाएँ। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों के अंदर यहाँ तक ये कहा गया इस्लाम में, तो देखें कि जब कोई अक्द भी कर रहे हैं तो उसे लिख लें, कल को भूल जाते हैं आपस के अंदर ये वो लोग। तो जब आप कोई ऐसा मामला कर रहे हैं जो इस बात के दरमियान ही जो है वो जो है ना वो दायरे कि भाई पता नहीं अक्द है भी या नहीं है, मदद है या क्या है, तो लिहाजा उस चीज़ को बाकायदा जो है वो वाजे जो है वो कर दें। ऐसे ही होता है कई दफ़ा लोग, जैसे अब आप जो है वो सदर जाते हैं तो मैं बोलूं कि यार आप रोज़ाना सदर जाते हैं, आते हुए वो चीज़ ले आइएगा, और आप जो है ना वो इसको इस एतबार से मेरे पास लेकर आ रहे हैं कि यार ये तो जो है ना मैंने चीज़ 25 की ख़रीदी है, कफील भाई को ले आके 30 की दूंगा अपना कमीशन रखकर। तो अब मैं जो है वो आपसे जो है वो ये नहीं समझ रहा कि आप मेरे से कमीशन जो है वो रख के जो है वो कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको मैं ब्रोकर नहीं समझ रहा। तो बात वही है कि इस तरह की भी कई दफ़ा कई चीज़ें होती हैं। एक आदमी जा रहा होता है, अच्छा एक मरतबा मंगाया तो उसने ला दिया, अब किसी ने आदत ही बना ली, या कई लोगों को पता चल गया कि यार ये उस तरफ जाता है तो चलो आते हुए हमारे लिए चीज़ ले आएगा। अब चंद दिन के बाद उसके जहन में भी ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि यार मैं रोज़ाना इन लोग का काम करता रहता हूँ, क्यों ना मैं इसके अंदर अपना कमीशन रख
200 रुपये, इन चीज़ों में मेरा भी पेट्रोल लग रहा है जी।
तो अब इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो उसे वाजे कर दें कि भाई ठीक है, मैं आपके लिए ये चीज़ लेकर आऊँगा तो जनाब इसकी इतनी उजरत लूँगा, मैं इतने पैसे इसके अंदर जो है वो रखूँगा। इस बात को आप जो है वो वाजे कर दें। तो यूं ही आप किसी के साथ कोई भी लेन देन कर रहे हैं, उस लेन देन को वाजे कर दें कि भाई ये चीज़ मैं आपसे ले रहा हूँ इस बुनियाद पर, या आपको दे रहा हूँ तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो दे रहा हूँ, ताकि वो चीज़ जो है वो क्लियर हो और बाद में जो है वो आपस में इख्तलाफात का बाइस ना बने।
रिश्तेदारों में कोई मारूफ होते हैं ना जैसे काम काज करने के हवाले से कि यार ये मार्केट जाता रहता है, इसको इस आइटम का पता है, फला चीज़ों का पता है, तो लोग काफ़ी उनसे कहते रहते हैं। अच्छा, बच्चों के खिलौने हो गए या बच्चों के ख़ास ऐसे आइटम हो गए कि जो हर एक फैमिली को नहीं पता होती कहाँ से मिलेंगे या मुनासिब कीमत में कहाँ से मिलेंगे, होल सेल इसकी मार्केट कौन सी। तो यूं ही मेरे पास एक आदमी है कि मुझे ख़ानदान वाले भी, भाई बहनें भी सब वो मेरे जिम्मे काम लगाते रहते हैं और अच्छे अच्छे महंगे आइटम होते हैं, और मैं भी इतनी मेहनत करके जाता हूँ बाकायदा उस मार्केट में, मेरा कोई काम नहीं होता लेकिन उन्हीं के काम के लिए मैं जाता हूँ
जी।
तो मैं फिर आगे उनको, अच्छा आज तक वो भी नहीं पूछते हैं, मैं भी नहीं उनको बताता, बस जो पैसे मैंने मैसेज किया है कि भाई ये इतने के तो वो भेज देते हैं, तो उसमें अपना प्रॉफिट रख रहे थे पूरा ये कर रहे था। तो इनको वाजे करना चाहिए कि भाई मैं आपको बेचूंगा
जी।
अगर ये तरीका इसका इख्तियार कर लिया कि भाई ये आपको चीज़ मैं बेचूंगा बाकायदा, ये हो जाए या क्या हो जाए,
अगर बेचने की तरफ जो है वो जाएंगे तो उसके अंदर जो है वो मुमकिन है कि ये सौदा पहले हो रहा हो, तो फिर वो ऐसी चीज़ की खरीद व फरोख्त का मामला आ जाएगा जो कि बवक्ते अक्द जो है वो मिल्कियत में नहीं है। तो लिहाजा या तो इस तौर पर हो कि भाई ठीक है मैं ये चीज़ जो है वो ख़रीद के लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद आपसे सौदा करूँगा। अब ऐसी सूरत के अंदर जब वो सौदा करेगा तो दोनों पार्टीज़ को इख्तियार होगा कि वो उस चीज़ को लें या ना लें।
ना लें,
जबकि यहाँ अमूमन क्या होता है कि नहीं भाई मैं तो खरीद के लिए आपके लाया हूँ, आप कैसे जो है वो इसको अब लेने से मना कर सकते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा है,
जैसे आजकल ऑनलाइन वाले कर रहे हैं सारे हैं
तकरीबन। इसलिए या इसमें बेहतर ये है कि भाई आप अपनी उजरत तय कर लें कि मैं आपके लिए वहाँ से सामान खरीद के ला कर आपके घर तक पहुँचाऊँगा, इसकी मैं इतनी उजरत जो है वो आपसे लूँगा,
ठीक,
फी सामान या जो है वो सारे सामान की, तो वो एक बिल्कुल वाज़े जो है वो अक्द हो जाएगा। अब ऐसी सूरत में ये सारी बातें उन अफराद को जहन नशीन रखनी होंगी जो शरई अहकामात होते हैं कि अब मैं अगर पैसों के ऊपर जाकर आपकी जो है वो चीज़ लाकर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और उजरत ले रहा हूँ मैं सिर्फ आने जाने की, सामान लाने पहुँचाने की, तो वो चीज़ मेरे हाथ में अमानत है आपकी। अब अगर खुदा ना खास्ता वो चीज़ जो है वो मेरी गफलत के बग़ैर, एक ही कि मेरी गफलत से ज़ाया होती है और एक ही कि मैं कोई कोताही नहीं करता, वो चीज़ वैसे ही ज़ाया हो जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसका जो भी तावान होगा, उसका जो भी नुकसान होगा, वो आपके ही ज़िम्मे होगा, वो आप मेरे ऊपर नहीं डाल सकते।
जी मसीह सवाल,
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जो करंट लग के मर जाते हैं लोग और उसी तरह जो हादसात में वफात पा जाते हैं, क्या वो शहीद कहलाएंगे?
अचानक अचानक कुछ हादसात ऐसे हो जाते हैं तो क्या हुक्म?
जी हाँ, जल करंट या जलकर मरने वाले अफराद जो है वो शहादत हुक्मी का जो है वो दर्जा पाते हैं, यूँ ही हादसात में इंतकाल करने वाले भी शहादत हुक्मी का दर्जा पाते हैं, जो भी मुसलमान हैं तो वो शहीद हुक्मी करार पाएगा।
फजर की नमाज अगर कज़ा हो जाए तो किस टाइम इसको पढ़ सकते हैं?
फजर की नमाज कज़ा हो गई यानी जैसे ही सूरज निकला तो कज़ा हो गई, तो अब 20 मिनट बाद सूरज निकलने से 20 मिनट तक ये मकरू वक्त होता है। इस मकरू वक्त के अलावा जो है वो फौरन जो है वो इस मकरू वक्त के बाद जो है वो उसे अदा कर सकते हैं, और जहर से पहले पहले अदा करेंगे यानी ज़हवाए कुबरा से पहले पहले, क्योंकि जहर से पहले ज़हवाए कुबरा का मकरू वक्त होता है जिसे अवाम जवाल का वक्त कहते हैं, तो उससे पहले पहले अदा करेंगे तो फिर सुन्नतें भी जो है वो अदा कर लेंगे, साथ में सुन्नत भी पढ़ेंगे और फ़र्ज़ भी जो है वो पढ़ेंगे, और अगर जहर के बाद जो है वो कोई कज़ा करता है तो फिर जो है वो सिर्फ फ़र्ज़ की अदायगी करेगा।
ठीक है, मज़ीद सवाल।
मेरा सवाल वो ये है कि अगर औरत इस्लाम से खारिज हो जाए तो क्या उसका जो है वो निकाह था, क्या वो फासिद हो जाएगा?
मजीद
मुफ्ती ने करम ये इरशाद फरमाए कि ऑनलाइन का बिजनेस भी चल रहा है आजकल, ऑनलाइन ज़्यादातर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस होती हैं और भी कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन होते हैं, अब हफ्ते में 5 दिन हफ्ता एतवार के अलावा, आप फीस पहले एडवांस दे चुके होते हैं लेकिन 10-15 दिन के बाद ऐसा महसूस होता है कि पढ़ाने वाला सही नहीं है, या फिर पढ़ाने वाला क्या होता है कि कभी 10-15 मिनट लेट कर देते हैं, कभी 5 मिनट लेट कर देते हैं, फिर अगर उनको बोलो कि इजाफी टाइम दे हमें तो वो कहते हैं कि हमारी दूसरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो इस तरह करते करते ये महीने गुजर जाते हैं, फीस भी पहले एडवांस ली जाती है। अब इस मामले में क्या करेंगे? दोनों तरफ ये है कि वो जान छुड़ाने वाली बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो मैंने फीस दी है उस हवाले से मुझे वो पढ़ाई मिल नहीं रही है।
ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर लेने का भी सिलसिला है और दीगर भी। पहला सवाल है कि इस्लाम से अगर औरत किसी तरह कोई ऐसा कुफर हो गया या कुछ ऐसा मामला,
देखिए अगर किसी भी औरत ने जो है वो कुफर जो है वो माज़ल्ला बक दिया ऐसा कि उसकी वजह से उसके ऊपर जो है वो दायरे इस्लाम से खारिज होने का हुक्म जो है वो हुआ, तो बहरहाल ऐसी सूरत के अंदर तजदीद निकाह जो है वो करना होगा उन्हें, पहले तजदीद ईमान करना होगा उस औरत को और फिर तजदीद निकाह भी अपने शौहर के साथ ही करना होगा। औरत को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि जनाब वो जो है वो बोले कि निकाह तो ख़त्म हो गया मैं आगे किसी और से निकाह कर रही हूँ, इस बात की इजाज़त है, वो पाबंद होगी इसी बात की कि तजदीद ईमान करे और उसके बाद अपने शौहर से ही तजदीद निकाह करे
उसी शौहर से, यानी ठीक है। ये जो दूसरा था ऑनलाइन काम के हवाले से बल्कि लेक्चर लेने के हवाले से, क्या फीस ले?
ऑनलाइन सर्विस की हम बात करें कि ऑनलाइन कारोबार में एक तो ये है कि प्रोडक्ट की सेल एंड परचेज है और एक ये है कि आप जो है वो ऑनलाइन सर्विस जो है वो फराम जो है वो कर रहे हैं, तो उसके अंदर दारोमदार इसके ऊपर है कि उर्फन या आपके एग्रीमेंट में क्या बात तय हुई है। जैसे गुज़िश्ता दिनों एक इंटरनेट कंपनी का जो है वो एग्रीमेंट मेरे पास जो है वो आया, तो उन्होंने उसके अंदर जो है वो उस बात को मेंशन किया हुआ था कि देखें कभी ना कभी जो है वो ड्रॉप भी होता है कि भाई हम इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उसमें उन्होंने दिया हुआ था कि पूरे महीने में इतने घंटे बनते हैं तो समझें कि हमारा मार्जिन इतना है कि हम आपको 5 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा अगर होगा ना कि हम आपको नहीं दे सके तो फिर जो है वो हम आपके हमारा आपके साथ एग्रीमेंट है कि आप हमारे ये पैसे जो है वो काट सकते हैं।
ठीक,
और इतने के अंदर जो है वो ये आपके साथ एग्रीमेंट है, इतना अप एंड डाउन जो होगा तो हमारा एग्रीमेंट वही जो रेट तय है उसके मुताबिक ही रहेगा। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर भी कि भाई उर्फन जो है वो 5-10 मिनट अगर इसकी जो अगर उर्फ है उस इंडस्ट्री के अंदर कि भाई उतना वो लेट आता है उस्ताद, लेकिन अपनी चीज़ वो पूरी मुकम्मल जो है वो डिलीवर जो है वो कर देता है तो ठीक है, ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हरज नहीं है। और एक ही वो वाकई जो है वो चीज़ कवर ही नहीं हो पा रही, ना वो अगले लेक्चर्स में कवर कर पा रहा है ना दीगर चीज़ों के अतबार से, तो फिर बिल्कुल जो है वो इनको जो है वो इस बात का तस्फिया करा कर वो कटौती का हक जो है वो रखते हैं जिन्होंने फ़ीस जो है वो अदा की है। इसी तरह आप अगली बात ये कहते हैं कि भाई वो चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे, तो अब ये एक वो बात है कि जो दोनों के दरमियान इख्तलाफ वाली बात आएगी, तो ये तो फरीकैन को बिठाए बगैर कि भाई एग्रीमेंट में क्या बात हुई थी, आप क्या सिखाएंगे, वो बोलेगा भाई मैं सिखाने वाला हूँ, मुझे पता है कि क्या चीज़ सिखानी है, सीखने वाला आप ये दावा कर रहे हैं कि नहीं आप मुझे वो चीज़ नहीं सिखा रहे, तो भाई वो चीज़ हमारे इस कोर्स में शामिल ही नहीं थी या पैकेज में शामिल ही नहीं थी। तो ये वो चीज़ है जो कि बहरहाल इख्तलाफी है, जिसमें फरीकैन को किसी एक थर्ड पार्टी या मुफ्ती साहब के पास बैठ कर उस मसले को बहरहाल जो है वो हल करवाना होगा, अगर वाकई ऐसा है कि जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक वो चीज़ डिलीवर नहीं की गई तो यकीनन फिर ऐसी सूरत के अंदर इन्हें जो है वो अपनी फ़ीस की कटौती या मुकम्मल वापसी का हक हासिल होगा।
ये मुकम्मल उसका नहीं। अच्छा, आम भी घरों के अंदर भी ज़्यादा जो ट्यूशन पढ़ाते हैं या दीगर, तो इसमें भी इस चीज़ का एहतमाम करना होगा।
जी बिल्कुल,
वहाँ पर टाइम तय है कि आप एक घंटा है,
वक्त का ही जा रहा है तो एक घंटा है, तो अब उसका जो है वो उसके साथ जो है वो तय होगा। अब या तो ये वही बात कि एक घंटा इस तौर पर तय है कि भाई चले अगर 10 मिनट में लेट आऊँगा तो मैं 10 मिनट जो है वो बाद में दे दूँगा, तो फिर आपको ये देने होंगे। और अगर उन्होंने इस बात की आपको इजाज़त दी कि भाई ठीक है 5-10 मिनट लेट आने पर कोई एतराज़ नहीं है तो ठीक है, फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हर्ज नहीं होगा। वो भी कोई आदत ही अपनी ना बना ले तो भारत उर्फ के मुताबिक होगा या बाहमी रजामंदी के साथ उस चीज़ को पहले तय कर लिया जाए, तय करने के बाद जो है वो बहरहाल उस तयशुदा की पाबंदी ज़रूरी है। हाँ, कोई उस्ताद लेट हुआ, उसकी कटौती बन गई, उसने कह दिया कि भाई मेरे इतने मिनट लेट हैं, इस दफ़ा आप कटौती कर लीजिएगा, अब जो फ़ीस की अदायगी करने वाले वालदैन हैं वो कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं, इसकी कटौती का कोई मसला नहीं, हम आपको पूरी ही रकम देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो ठीक है। अब जब उन्होंने अपनी तरफ से खुद ही अपना वो हक साकित कर दिया तो आपके लिए मुकम्मल फ़ीस लेना दुरुस्त हो।
स्कूल फीस वगैरह भी ये मामला तो होता ही है,
सब चीज़ों के अंदर यही है। इसके अंदर यानी यहाँ पर ये थोड़ा सा एक वो है कि कई जगहों के ऊपर यानी अमूमन वालिदैन जो है वो यहाँ पर सेठ होते हैं गोया के,
ठीक,
यानी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जो अकदे इजारा के अतबार से हम बात करें तो जिस तरह हमारा जो सेठ होता है वो बतौर मुलाजिम हमें तनख्वाह देता है, तो यहाँ पर फीस वाले जितने भी मामलात हैं उनमें जो फीस दे रहा होता है वो सेठ है,
यानी वालदैन है,
वालदैन है, या जो अगर कोई बच्चा अपनी फीस दे रहा है किसी स्कूल को या यूनिवर्सिटी को या किसी को, तो वो गोया के सेट हो गया, सामने वाला उसका मुलाजिम है।
सही है।
तो अब ये अकदे इजारा के अंदर जो चीज़ें तय हुई हैं उसके मुताबिक उन पैसों के एवज वो सर्विसेज फरहम करना ये सामने वाले की जिम्मेदारी है, अपनी मर्जी से वो उस सर्विस के अंदर कमी बेशी खिलाफ उर्फ नहीं कर सकता।
ठीक,
उसी वक्त करेगा जबकि वो सामने वाले से इजाज़त ले ले, वो बाहमी रजामंदी से इजाज़त दे दे कि ठीक है आप 2 दिन मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं फ़ीस पूरी दूंगा, तो ठीक है ऐसा कर सकते।
जून जुलाई में मसाइल होते हैं फीसों के?
बिल्कुल, जून जुलाई के अंदर जो है वो होते हैं, कई लोग इस बुनियाद के ऊपर जो है वो नहीं देते या कई इंडस्ट्री के अतबार से जो है फ़र्क पड़ जाता है। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ जून जुलाई में, हमारे यहाँ से मुराद में कहूँ शायद सिंध और पंजाब के अंदर हैं, बलूचिस्तान या उस तरफ शायद जो है वो कुछ छुट्टियां सर्दियों वाली साइड पर होती हैं।
सही,
मरी वगैरह कश्मीर वगैरह की तरफ ना, दूसरी तरफ जो है वो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, वहाँ पे गर्मी में इतना वो नहीं होता। तो हमारे यहाँ पर तो अभी बड़े शहरों के अंदर उर्फ यही है कि भाई जून जुलाई की छुट्टियाँ इसी तरह हैं जिस तरह हफ्ते के अंदर हफ्ता और इतवार की छुट्टी होती है,
यानी इसकी फ़ीस पे
उसकी फ़ीस जो है वो पे की जाती है। तो वो अंडरस्टूड तौर पर भी है, कई जगह पर एग्रीमेंट्स में लिखा हुआ भी होता है फ़ी अंडरटेकिंग फॉर्म में, वरना उर्फन बहरहाल जो है वो मारूफ है, तो वो सराहतन या उर्फन जब वो चीज़ तय है तो उसकी फ़ीस अदा की जाए।
स्कूल वैन वाले भी बहुत मामला चल रहे होते हैं वालदैन से, ये अगस्त का महीना जो होता है ना, तो इसमें कुछ मसाइल रहते हैं, क्या मशा देंगे?
इसके अंदर भी यही है कि वालदैन को चाहिए, स्कूल वैन वालों का भी बाज़ जगह उर्फ है बाज़ जगह जो है वो उर्फ नहीं है, उनकी तरफ से जो है वो खामखा ये तकाजा होता है कि जो कुछ स्कूल भी कर रहा है तो लिहाजा हम भी वही जो है वो आपसे तकाजा करेंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है। शरई एतबार से कई चीज़ों के अंदर इन चीज़ों को पहले से तय कर लेना चाहिए वालदैन को भी, स्कूल वैन वालों को भी, کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے، ہم اتنی چھٹیاں کریں گے، اتنا یہ کریں گے، اتنا معاملات جو ہے وہ کریں گے، تو پہلے طے کر لیں گے تو امید ہے کہ بعد میں جو ہے وہ نزاع یا جھگڑے کی صورت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ بہرحال دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو شرعی اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنا اور اس کو پہلے سے طے کر لینا یہ ضروری ہے۔ اس میں میں یہ کہوں گا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عموماً یہ جو کیٹیگری ہے وین والی وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی، جی ہاں، لیکن ہمارے والدین کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو ان سے میں یہ درخواست کروں کہ ان کو بس اوقات اس چیز کا نہیں ہوتا اور وہ پھر آخر میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں سب بچے دے رہے ہیں، سب بچے دے رہے ہیں، ہر اسکول والے وہ دے رہے ہیں،
تو آپ بھی جو وہ دیں، تو اس لیے آپ اس چیز کو پہلے ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ طے کر لیں تاکہ بعد میں جھگڑے کا باعث نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپریل کے اندر آپ نے بچے کو جو ہے وہ داخلہ کروایا ہے، اب وہ جو ہے وہ جون جولائی کا تقاضا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دو مہینے بعد ہی، حالانکہ وہ عمومی طور پر جو ہے وہ سال کے پورے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جو بچہ پچھلے سال سے جو ہے وہ اب تک پڑھ رہا ہے تو اس کے گویا کہ بونس کے طور پر جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال عرف کے مطابق بھی اور جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے ان چیزوں کو۔ کئی جگہ کے اوپر اسکول کا تو عرف ہے، وین والوں کا عرف نہیں ہے،
اور پھر رکشے والے جو عام طور پہ نارمل رکشہ چلایا
وہ آگے جو ہے وہ ہے، تو بہرحال ان تمام چیزوں کے اندر وین والوں کو بھی یہ چاہیے، رکشے والوں کو بھی اور والدین کو بھی، کہ چیزوں کو پہلے سے طے کر لیں، اس کے مطابق ہی آگے معاملات کو لے کر چلے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔
مشورہ کیا دیں گے، آپ طے بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، آپ جھگڑا کر رہے ہیں، تو اب اس جھگڑے سے کیسے نکالیں گے؟ آج کل تو یہ سوالات لوگ کر رہے ہیں۔
دیکھیں جھگڑے سے نکلنا وہی ہے، کئی جگہ پر وہ کیس ٹو کیس پھر معاملات چلے آتے ہیں، کئی جگہ پر واقعی وین والے کا تقاضے ہی ناجائز ہوتا ہے۔ جب ناجائز ہوگا تو اب والدین اگر اس سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے اسے دیں گے تو اس کے حق میں حرام ہو جائے گا،
ناجائز ہو جائے گا کہ بھئی اب
جی یہ تو چلے بچوں کو جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے حق میں بہرحال وہ مال جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ کیس ٹو کیس بہرحال دیکھا جائے گا، مشورہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ معاملہ
پہلے طے کر۔ جی ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے اور دین اسلام کے احکامات جس طرح ہیں اسی طرح ہمیں روزمرہ کے معاملات بھی اپنے ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیوں رہنما ہمارے غلاما، او کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔